अब दूसरी चीज, इससे अगली, जब अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की बात समझ आती है तो एक दूसरा अदब, और वो अदब क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तरफ़ाउ अस्वातकुम, मत ऊंची करो अपनी आवाजें, फौक सौत नबी, ऊपर नबी की आवाज के, वला तजहरू लहू बिल कौली, और ना पुकारो उसके सामने बात को, का जहरी बादी कुमली बादिन, जैसे तुम पुकारते हो बाज में से बाज को, क्या नुकसान है, अंतहबत आमालुकुम, ऐसा न हो कि खप्त हो जाए, जाया हो जाए तुम्हारे आमाल, वान तुम ला तशुरून, और तुम्हें शौर भी ना हो। एक स्ट्रेच में अगर इस पूरी आयत को पढ़ें, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद ना करो, और ना नबी के साथ ऊंची आवाज से बात किया करो, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा किया कराया सब गारत हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। खतरनाक हद तक खौफजदा कर देने वाली आयत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वजूद के साथ जब सहाबे कराम के बीच में मौजूद थे, तो उस वक़्त तो इस आयत की मिसाल यही थी कि अल्लाह के नबी के सामने अदब से बोलो। तो यहाँ थोड़ा सा समझिए कि इस्लाम दीनुल अदब है, इस्लाम मैनर्स का दीन है, एटिकेट्स, आपका दूसरों से इंटरेक्शन, और सबसे पहले आप यहाँ अल्लाह और उसके रसूल को और आगे पूरी सूरत में मुआशरे के बाकी लोगों से आपको मिलता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज उम्मत मुस्लिमा नमाजों में आगे, हज और उमरे में आगे, रोज़ों में आगे, सदका खैरात में आगे, लेकिन आपस के मामलात में बिगड़ी हुई, और बिगड़ने वाले मामलात में जो बिगड़ा हुआ मामला है वो रसूलुल्लाह से। कह लीजिए अगर पहली आयत में अपेरेंटली अल्लाह के साथ मामला दिखा है ना ज्यादा, क्योंकि कानून साजी अल्लाह का हक है, अगर नबी ने तरीका सिखाया तो नबी का इख्तियार फिर भी नहीं है, क्योंकि लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक, सूरह तहरीम में अल्लाह ने कहा कि नबी को भी हराम को हलाल और हलाल को हराम करने का हक नहीं। तो पहली आयत में बुनियादी तौर पर अल्लाह के साथ अदब था, अब ये दूसरी में नबी के साथ है। नबी की महफिलों में, मजलिसों में हाजिर होने वालों को बताया गया कि बात करो तो ढंग से करो, मुलाकात करो तो ऐसे तरीके से करो कि आम लोगों से जैसे बातें की जाती हैं वैसे नहीं। ये मत भूलो कि वो कोई आम आदमी नहीं है। देखिए नबी सल्लम अपने मामलात के लिए सहाबा के बीच में बैठते, आपने कोई अपने लिए ऊंची मसनद नहीं बनाई हुई थी, आप कुछ शाही प्रोटोकॉल के आदी नहीं थे, आपकी तबीयत में आजजी भी थी, इनकसारी भी थी, मिलनसारी भी थी, इसके बावजूद अल्लाह कह रहा है कि अब तुम उनकी तबीयत की नरमी और उनके किसी बात पे बुरा ना मानने की वजह से अब इतने कैजुअल मूड में ना आ जाओ कि जैसे अपने बच्चों को बुलाते हो, जैसे दोस्तों को बुलाते हो, जैसे आपस में बात करते हो, आम लोगों जैसी बातें शुरू हो जाओ, उनका वक्त ज़ाया कर दो, उनके साथ गिफ्तें शुरू कर दो, तो तुम्हारी गुफ्तगू में आमियाना रंग नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें क्या कि ऊंची आवाज़ से ना बोलो। वो लोग जो अल्लाह के नबी के गिर्द थे ना, उनमें से अक्सर लोग बद्दू थे, और जो देहाती लोग होते हैं ना वो ऊंची बोलते हैं, तबीयतन भी ऊंची बोलते हैं, जानवरों ढोर डंगर के बीच में रहने की वजह से उनके अंदर से वो एक नज़ाकत भी ख़त्म हो चुकी होती है, जिस तरह आप कह लीजिए कि खरे कह लीजिए लेकिन थोड़े से कठोर वाले अंदाज थे, अल्लाह ने यहाँ मना कर दिया ऐसा ना करो। और ये वो आयते हैं कि जिसको पढ़कर एक सहाबी, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हो, आवाज़ उनकी फितरतन ऊंची थी, घर बैठ गए, एक दिन हुआ अल्लाह के नबी की महफिल में नहीं दिखे, दूसरा दिन हुआ नहीं दिखे, खैर दूसरे साहबी ने जाकर पूछा भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ कैस, का क्या बताऊं मैं तो अब जाऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरी तो आवाज़ ही ऊंची है, अल्लाह के नबी बात करते हैं धीमी आवाज़ होती है नरम होती है, मैं तो बोलता हूँ तो बहुत ऊंची बोलता हूँ, तो मेरे तो सारे अमल ज़ाया हो गए। ये पैगाम जब अल्लाह के नबी तक पहुँचाया गया तो आपने कहा उसको बुलाओ, जब वापस आए कहा ये बात तेरे लिए नहीं है, यानी फितरतन आवाज में ऊंचापन था या कुछ था लेकिन अंदाज अच्छा, आजजी अच्छी है, तो वो इससे मुराद नहीं, बल्कि इससे मुराद क्या है कि जब नबी के साथ बात करो तो उनकी राय के ऊपर अपनी राय ना दो। अब यहाँ देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे पास बजात मौजूद नहीं, तो फिर यहाँ पहली इसकी इम्प्लीमेंट क्या होगी, हदीस के मुकाबले में कॉल को ना लो। जब तुम्हारे सामने एक सही हदीस आ गई तो किसी का कॉल, चाहे वो वक्त के मुफ्ती का, इमाम काबा का, वो हरमैन शरीफैन के बड़े लीडर का, या तुम्हारे किसी भी माजी के इमाम का हो, उसकी हैसियत कब है, जब वो अल्लाह के नबी की हदीस से मुताबकत रखता है। सिर्फ इसी एक अदब को सामने रखिए, उम्मत के चारों फिरके जुड़ जाएंगे। सुन्नी, शाफ़ी, हनफी, मालिकी, ये चार खूबसूरत मज़ाहब हैं जो आज मुसलमानों में, इन चारों को जोड़ने वाली ये आयत है। हनफी बने हो कोई बड़ी बात नहीं, बट जहाँ इमाम अबू हनीफा की कोई राय, कोई कौल अल्लाह के नबी की सही रिवायत से टकराता हुआ दिखे, और पहले हदीस नहीं थी मौजूद, उन तक पहुंची नहीं, कुछ भी वजह हुई, आज मिल गई है, उसकी रिसर्च हो गई, तो आप बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनके उस अमल को एक साइड पे करके आप उस अमल को ले लें। क्यों? क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ये खुद कह कर गए, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद चार आयमा के अकवाल ऑन रिकॉर्ड हैं, मौजूद हैं इस वक्त भी, कि अगर कभी कल हमारे किसी कॉल के मुकाबले में तुम्हें सही हदीस मिल जाए तो हमारे कॉल को दीवार पे मार देना और उस हदीस को ले लेना, क्योंकि कोई बंदा ये दावा नहीं करता कि मेरे पास सारा इल्म आ गया। आयमा कराम तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत शख्सियात थी, ये तो कई सौ साल बाद की हस्ती हैं, नबी के साथ उठने बैठने वाले उमर फारूक को कई मसले नहीं पता थे। उनके दौरे खिलाफत जो अल्लाह के नबी के कितने 12 साल बाद, सिर्फ 2 साल अबू बकर के निकाल दें तो उमर का दौर शुरू होता है, और उमर रजी अल्लाह अन्हो का भेजा हुआ एक शख्स गवर्नर किसी जगह पहुंच गया और बिल्कुल सरहद के करीब है और हमला करना चाहते हैं उस पर। जो कमांडर थे उन्होंने कहा कि उमर हम ऐसे नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा है कि जब जाओ कहीं तो पहले से बता के जाओ, ऐलान करो, इस तरह करो। कहा मुझे तो ये बात नहीं पहुंची। इसी तरह एक और वाक्य है कि वहां ताउन फैल गया। उमर कह रहे हैं गवर्नर को कि जाइए आप उस मुल्क में दाखिल हो। आपका कमांडर कहता है नहीं जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा जहां बीमारी फैल जाए ना बाहर वाले अंदर आए ना अंदर वाले बाहर आए। उमर कहते मैंने तो नहीं सुनी ये बात। अच्छा रुको इधर ही, मैं मदीना में भेजता हूँ, जाओ रिसर्च करके आओ, इसने अल्लाह के नबी के नाम पर झूठ तो नहीं बोला। जब मदीना में गए, एक नहीं 10 लोगों ने कह दिया हाँ हाँ ये बात हमने भी सुनी है। वहां से कासिद वापस आता है, उमर को कहता है यस बात सच्ची है। उमर कहते अच्छा सच्ची है, चलो वापस जाओ। उमर को इल्म नहीं हो सका, इनको मौजूद है इल्म। जो उमर दिन रात साथ रहने वालों में, उन तक एक बात नहीं पहुंच सकती, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आज के आपके किसी उस्ताद या आपके आज के किसी आलिम तक हर बात पहुंच गई है। याद रखिए ये दीन के खादिम थे, हमने इनके नाम लेकर आज उम्मत को तोड़ दिया, तो जब अल्लाह के नबी की सही रिवायत आ जाए उसको ले लीजिए, फिर आप हनफी बने, नो प्रॉब्लम, आपको कोई नहीं रोकता हनफी बनने से, शाफी मालकी से। नाम ना रखें अपने, जो उनका मजहब था वही आपका मजहब है, और चारों आयमा कराम कह कर गए कि हमारा मजहब हदीस है, हम अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक बात करते हैं। फिर आप देखिए कि इसमें एक और चीज़ भी देखिए, जब दिल में किसी के लिए एहतराम नहीं होता ना तो बोलने के अंदाज ही पता चल जाता है। बाज़ लोग झूठी मोहब्बतों के गुण बड़े गाते हैं, मुंह पे आते हैं चापलूसियां, मीठी बातें, ये जुमला बोलेंगे, 10 जुमले मिलाकर एक खूबसूरत एक कोटेशन बना के पेश करेंगे, बट उनके दिलों में आपके लिए एहतराम नहीं होता वो पता चल जाता है। आप अपने माँ बाप की इज्जत करती हैं, आपके बोलने से पता चलेगा। आप अपने शौहर की रिस्पेक्ट करती हैं, आपके बोलने से पता चलेगा और उनको बुलाने से पता चलेगा। और अल्लाह माफ़ करे कि बाज़ ख़वातीन तो शौहर का नाम ऐसे लेती हैं जैसे छोटे भाई का, और उनको अपने शौहर में हर खराबी नजर आती है जैसे अपने बच्चों में नजर आती है। तो याद रखिए बेअदब आप खुद जानते हैं, बाअदब बानसीब। जितना अदब आएगा आपके मेरे अंदर उतना अदब होगा, और अगर हम इन सारी चीज़ों को अपने सामने रखें तो यकीन करें ना घर टूटे, ना लड़ाइयाँ हो, ना झगड़े हो, हालात बदल जाते हैं जिंदगी में, कई दफ़ा एडवर्सिटी आएगी, लेकिन अगर आपके दिल में दूसरे के लिए अदब रहा, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह मुवाफ़कत होगी। लेकिन जहाँ आपस में इज्जत ख़त्म हो जाती है एक दूसरे से, वहाँ तो साथ रहकर भी इंसान झगड़ता है, दूर रहकर झगड़ने की तो क्या बात है। तो खुलासा क्या निकला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम पहचानो। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, और आज इसी से फिर सारे दीनी रहनुमा आते हैं। कोई दीनदार किसी मसलक किसी मजहब को रिप्रेजेंट करता है, आपका मेरा कोई हक नहीं है कि उनके ऊपर तनकीद करें, उनके खिलाफ हम एग्रेशन पैदा करें और उनको बुरा भला कहें। तुम उनकी अच्छी बात जो तुम्हें समझ आती है ले लो, अगर तुम्हारा अपना इल्म इतना पुख्ता है कि तुम कुरान सुन्नत को समझ गए हो तो किसी से भी फायदा उठा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अभी कुरान सुन्नत का ही नहीं पता तो फिर सिर्फ कुरान सुन्नत वाली की बात को सुन लो ताकि तुम्हारा शरह सदर हो जाए और कहीं किसी के मीठे बोल और खूबसूरत दावत और स्पीच के अंदर आकर तुम गलत चीज को ना ले लो। अब इसके बाद आगे देखिए तीसरी चीज, हर आयत को आप देखिए तो एक मजमून है और एक मुस्तकिल मजमून है, और वो क्या, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा लहुम मग़फिरतुन व अजरुन अज़ीम। जो लोग रसूल खुदा के हजूर बात करते हुए अपनी आवाज़ पस्त रखते हैं, अब देखिए खूबी बयान की गई कि जब आपके सामने आते हैं तो धीमी टोन में बात करते हैं, नरमी में बात करते हैं, वो दर हकीकत वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए जांच लिया है। क्या है इनके लिए? इनके लिए मग़फ़रत है और अजरे अजीम है। इसके बरक्स साथ ही अगली आयत लें तो दोनों को इकट्ठा समझते हैं, इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून। ए नबी, जो लोग तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं इनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। क्या करते फिर बाहर से पुकारने की बजाय, वलो अन्नहुम सबरू, और अगर वो सबर कर लेते, हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहां तक कि अब खुद उनके पास आ जाते, निकल आते उनके पास, लकान खैर अल्लहुम, अलबत्ता होता बेहतर उनके लिए, तो वल्लाहु, और अल्लाह ताला है गफूर रहीम, बख्शने वाला मेहरबान। यहां आपको अब दो मुख्तलिफ किरदार दिखाए गए। पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नरम आवाज से, पस्त आवाज से बात करना दिल के तकवा की अलामत है। याद रखिए, खूबसूरत लोग होते हैं जो नरमी से बात करते हैं। आप और मैं अपने बोलने की टोन को देखें, जब बोलती हूं तो कानों में रस घुलता है, जो अगला कानों में उंगलियां रख लेता है कि इतनी ऊंची और इतनी तेज बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ इम्तहाना की बात है, इम्तिहान की बात है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला लोगों पे आजमाइशें डालता है। ये मेरे आपके ऊपर जो मुख्तलिफ हालात आते हैं ना, ये असल में हमारी आजमाइश होती है। अल्लाह हमारे दर्जे आगे करना चाहता है। जैसे 9वीं के इम्तिहान के बाद 10वीं में चले गए, 10वीं के बाद 11वीं में चले गए, हर इम्तिहान के बाद दर्जा होता है, ये आप दुनिया में भी देखते हैं। इसी तरह जब आपके मेरे ऊपर कुछ आजमाइशें आती हैं ना, तो उनसे गुजार कर अल्लाह देखना ये चाहता है कि दिल तकवा वाला हुआ कि ना हुआ, दिल में अल्लाह और उसके रसूल का अदब और एहतराम हुआ कि ना हुआ। जब दिल में तकवा होता है ना, तो इम्तिहानात के बाद एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत सामने आती है जो यागुद्दूना स्वातहम वाली होती है। इसके बरक्स बाज़ लोग मुख्तलिफ इम्तिहानात से गुजर कर और रूड और क्रूड हो जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा अब हम करके दिखाएंगे, मैं बड़ी अच्छी थी मुझे हालात ने बुरा बना दिया, मैं बड़ी भोली थी हालात ने मुझे होशियार बना दिया, मुझे चलाक बना दिया, मैं बड़ी नरम बातें करती थी अब मैं खुरदरी हो गई हूँ। गलत बात है, हर मुश्किल के बाद अपने आप को अच्छा रखें। फिर दूसरी बात आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में वो लोग जो बराहे रास्त आपकी सोहबत में रहे, जिसको आप कहते हैं सोहबत सालेहीन या एक नबी की कस्टडी में रहना, और अगर नबी को एक उस्ताद समझे, क्योंकि अल्लाह के नबी हम सब के उस्ताद भी हैं, और ख़ास तौर पे उन सहाबा के जो आपके पास बैठ के इल्म हासिल करते थे, तो जिन्होंने आपकी सोहबत से फ़ायदा उठाया उनकी तो बहुत खूबसूरत किरदार साजी हो गई। बात कैसे करें, चले कैसे, काम कैसे करें, किस वक्त आप सो रहे हैं, किस वक्त आप जाग रहे हैं, आपके आराम का भी ख्याल रखते थे, आपकी हर बात समझते थे, और उनको पता था कि अल्लाह के नबी मसरूफ इंसान है, कभी थके होंगे कभी कुछ, तो वो तो बहुत मुनासिब वक्त में आपसे फायदा लेते थे। बट कुछ लोग बाहर से आते थे, बद्दू देहाती, जब खुद फारिग होते थे तो आधमकते थे, और आपकी अजवाजे मोहतरमात जो थी उनके हुजरात के बाहर खड़े होकर कहते या मोहम्मद उखरुज, या मोहम्मद उखरुज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और साथ ही नाउज़ुबिल्लाह नाम लेते, बदतमीजी से बोलते, और फिर इंतजार क्या नहीं करते कि जल्दी से बाहर आ जाएं, जब जहां आप आ गए जी बताइए क्या हाल है। ये बिल्कुल वही अंदाज है जो आज कुछ लोग आपस में भी एक दूसरे के साथ करते हैं, जब दिल चाहा फोन कर दिया, जब दिल चाहा कमरा नॉक कर दिया, जब किसी के घर जाके ठक ठक दरवाजा खटका दिया, ये अच्छा अदब नहीं है। अल्लाह ने यहां ये सिखाया आम लोगों के साथ भी, लेकिन वो शख्स जो इतने कामों को लेके चल रहा हो तो सब्र से बैठो, तुम बैठो वो खुद बाहर आएंगे तो देखना, और ये सिर्फ नबी का नहीं था, ये सहाबा का अपने दूसरे सहाबा के साथ अमल था। हज़रत जाबिर मदीना से हदीस लेने गए और एक दूसरे सहाबी जाबिर की बजाय अब्दुल्ला बिन उनैस थे, वो मदीना से एक ऊँट खरीद कर मुल्क शाम गए थे इल्म सीखने। पता चला कि वहाँ जो सहाबी हैं उन्होंने हदीस बराह रास्त नबी सल्लम से सुनी हुई है। इतना सफ़र करके महीनों की मुसाफत के बाद जब पहुँचे तो ऐन दोपहर का सूरज चमकते हुए का वक्त है, दरवाज़ा नहीं नॉक कर रहे। क्यों? आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, गर्मी, दरवाजे के बाहर बैठ के जाके। हम होते तो एहसान जतलाते, आ गए हैं इल्म सीखने, बताओ जल्दी करो, इतनी मेहनत से आए, इतनी मुशक्क़त से आए, गर्मी में आए, हमारी कदर ही नहीं। नहीं, कोई रिजेंटमेंट नहीं, कोई अपने अंदर एटीट्यूड नहीं था। जब खुद वो बाहर निकले सहाबी, अरे तुम कहाँ, कहा अंदर क्यों नहीं आए? कहा मैंने कहा आराम कर रहे होंगे, मैं आपसे इल्म लेने आया हूँ और मैं आपके साथ इस तरह का रवैया के अख्तियार करूँ। ये वो तरबियत याफ्ता, वो इदारा था। याद रखिए कि जब साथ बैठ के हम बात करते हैं, जब सीखते हैं, जैसे इस वक्त आप सब सीख रहे हैं, क्या आपकी तरबियत नहीं हो रही? सुबह से आप बैठे हैं, आप देखिए मेरे हाले 1.5 घंटे हो रहे हैं आपको बैठे हुए, मेरे गुमान में या इससे भी ज्यादा। आप उठे क्यों नहीं? घर में आप इतनी देर बैठते थे? और ये सब कुछ आप नेट पे ले रहे होते तो वही अच्छे स्टूडेंट बैठते हैं। हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं कि हम वहाँ भी ऐसे ही बैठते हैं जैसे उस्ताद के आगे बैठे, स्काफ भी लेते हैं, वजू भी करते हैं, पाँव पे पाँव भी नहीं रखते, वैसे बैठते हैं जैसे बैठना है, लेकिन ये थोड़े होते हैं। तो यहाँ ये सिखाया गया, अदब इख्तियार करो, खास तौर पे वो लोग जो दावत इल्लाह का काम करें, इस्लाहे खल्क का काम करें, तो उनके ज़ाती आराम का भी ख्याल रखो, उनकी घरेलू ज़िंदगी को भी मुतासिर ना करो। ये नहीं कि जब जहाँ जैसे आए, ना शाइस्तगी से बचो। और ये जो अल्लाह के नबी के अजवाज मुतहरात है, छोटे छोटे हुजरे थे, शायद कहते हैं कि मैं भी आप आज के दौर में ऐसे समझ लीजिए कि 6x10 का हुजरा होगा। इतना छोटा हुजरा होता था कि अल्लाह के नबी जब आयशा सिद्दीका के हुजरे में तहज्जुद पढ़ते थे तो जब सजदे में जाना होता तो आयशा पांव सुकेड़ती तो आप सजदा करते। मेरे जहन पता क्या आता है आपके हुजरात का सोचकर, किसी भी ट्रेन के अंदर आपको एक कैबिन नहीं मिल जाता, छोटा सा 6 लोगों का एक कैबिन स्लीपर, इतना छोटा। और कहूँ अगर तो गलत नहीं होगा कि आज के हमारे वॉशरूम भी उससे बड़े हैं, उसमें 4 पहियां जाके बिछा लो। लेकिन इतने छोटे हुजरों से क्या निकला, क्या वो बीवियां थी, क्या साबिरात थी, क्या शाकिरात थी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ रोक दिया कि तुम अपने आप को दुरुस्त रखो, सही तौर पे रखो। आप देखिए कितना खूबसूरत दीन है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब अगला हुक्म इंसानी मुआशरे में रहते हुए दूसरों के साथ है, यानी ये जो 5 आयतें थी ना, कह लीजिए कि अल्लाह से, अल्लाह के नबी और हुजरात के नाते से आपके अजवाज भी आ गईं। आप 6 आयत से आगे आमतुल मुस्लिमीन के साथ क्या अखलाक और क्या अदब हो, आइए देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर कोई फासिक, फासिक किसको कहते हैं, जिन्होंने सूरह बकरा पढ़ी उनको पता है, الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم, यानी अल्लाह के वादों को सरेआम तोड़ने वाला। मुनाफिक कौन है? दिल का रोगी, ऊपर से बड़ा नेक बनता है, अंदर से खोटा होता है। फासिक है वो, कहता है मैं ऊपर से भी नहीं अच्छा बनता हूँ, मैं गंदा, उतारूंगा कपड़े, करूंगा गलत हरकतें। यानी फासिक वो जिसको गुनाह करके शर्म भी ना आए। लेकिन यहाँ क्या है, इसको देखते हैं। फरमाया अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आ जाए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी गिरोह को अनजाने में, नादानिस्तगी में नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर पशेमानो। जल्दबाजी ना करो, फौरी फैसले ना दो, ऐसा करोगे तो नुकसान होगा और बाद में तुम्हें इसके ऊपर शर्मिंदगी होगी। क्यों? वालम उन नफीकुम रसूलुल्लाह, और जान लो कि तुम्हारे बीच में अल्लाह का रसूल है। लो युती उकुम फी कसीर मिन अलअम्री, अगर वो बहुत सारी बातों में तुम्हारा कहना मान ले, लअनतुम, तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ। वलाकिन्नल्लाहा हब्बब इलैकुमुल ईमान, लेकिन अल्लाह ने महबूब कर दिया तुम्हारे लिए ईमान को। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और उसने तुम्हारे सीनों को मुज़य्यन कर दिया, यानी किसको? ईमान को। ईमान तुम्हारे दिलों में जम गया, रासिख हो गया। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और मकरूह कर दिया, नापसंदीदा कर दिया तुम्हारे लिए कुफर को, फिस को और नाफरमानी को। ओलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हैं भलाई वाले, फला पाने वाले। फजल मिन अल्लाह व नेमा, ये फजल है अल्लाह का और उसकी नेमत। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला खूब इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। ये एक पूरा हिस्सा है सहाबे कराम को बुनियाद बनाकर हम सब की तरबियत का। और तरबियत का नुक्ता क्या है? पहली चीज़ यह है कि बग़ैर तहकीक के बातों पे आगे ना चलो, अफवाहें ना फैलाओ। बहुत सारे लोग इस एक आयत के ऊपर नाम लेते हैं, एक सहाबी का, एक शख्स का, वलीद बिन उकबा बिन अबी मोईत। कहानी है छोटी सी, यानी जो इससे सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप सुनना चाहें तो, कबीला बनी मुस्तलक मुसलमान हो गया। अल्लाह के नबी ने वलीद बिन उकबा को भेजा कि जाइए उनसे ज़कात वसूल कीजिए, जैसे कि मुस्लिम हुक्मरानों की जिम्मेदारी थी उस दौर में भी और आज भी होगी अगर ऐसा दीन आता है, कि जाकर उनसे ज़कात ले लीजिए। गोया के उमाल बनकर ये गए। जब ये उस इलाके के करीब पहुंचे तो वो लोग इनसे डर गए किसी वजह से भी, तो भाग गए। और ये क्या समझे, कुछ इस किस्म की बात इनके कानों में आ गई कि ये कबीला मुर्तद हो गया और ज़कात देने से भाग गया, हालांकि बात फ़र्क थी। ये गए जाके अल्लाह के नबी को सुना दिया। अल्लाह के नबी, वो तो सारे मुनकर हो गए, उन्होंने तो ज़कात देने से इनकार कर दिया और मुझे कत्ल करना चाहते थे। अल्लाह के नबी को ये बात सुनकर बड़ा सदमा हुआ कि पूरा का पूरा कबीला ही फिर गया। आपने हुक्म दिया कि एक लश्कर तैयार किया जाए जो उनकी तरफ भेजा जाएगा। और बाज़ रिवायत में यहाँ तक आता है कि आपने लश्कर भेज दिया, और बाज़ कहते हैं कि भेजने वाले थे, लेकिन फिर उसके दौरान उसी कबीला बनी मुस्तलक के सरदार जो हारिस थे, जो हज़रत जवेरिया, जो अल्लाह के नबी के जौजा थे, उनके वालिद भी थे, वो खुद पहुँच गए। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, आपको किसने कह दिया हमने दीन छोड़ा? अल्लाह की कसम, हमने तो वलीद को देखा भी नहीं। ज़कात देने से इनकार तो दूर की बात है, और हम इनके कत्ल का तो इरादा भी नहीं करते। हम ईमान लाने वाले हैं, हम ज़कात दे रहे हैं। यह तो उस पे आयत उतरी कि अल्लाह के नबी जैसा शख्स किसी की डिस इंफॉर्मेशन का शिकार हो सकता है और एक मुसलमान कबीले पे ही हमला कर देता है ये सोच करके वो कबीला मुर्तद हो गया, तो आम जिंदगी में इसका कितना गहरा असर होगा। आप लिख लीजिए, अफवाह साजी से बचो। अफवाहें, स्कैंडल्स, र्यूमर्स फैलाना, दूसरों के बारे में सुनी सुनाई बात को ऊपर करना, ये है इस आयत का टॉपिक। और अफसोस की बात है कि आज हम खानदानी तौर पे, माशरती तौर पे, मुल्की तौर पे अफवाहों पे यकीन करते हैं। बेबुनियाद खबरें फैलाने वाले अखबार संजीदा अखबारों की निस्बत ज़्यादा बिकते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे अपने चैनल को सब्सक्राइब करने वाले, दावतें देने वाले झूठ के गवाह बने फिरते हैं। और जितना मीडिया और नेट आम होता जा रहा है, ये मुसीबत और से और बढ़ गई। ये मर गया, ये कत्ल हो गया, छोटी बात बड़ी बातें, अफवाह साजियाँ। एक 15 मिनट की खबरें सुन ले, ऐसे लगता है सारी दुनिया में जंगें लगी हुई हैं और चोरियाँ और कत्ल गारियत हो रहे हैं। इस्लाम इससे रोकता है। देखिए, मुसलमान एक मुहज़्ज़ब शख्स होता है। आप अपने ऊपर लीजिए कि आप तो ऐसी नहीं है। आधी बात सुनी, आधी इधर इधर की उधर हौलती हुलाती, ये हो गया वो हो गया, रिश्ते टूट जाते हैं बेकार बातों पे। किसी की बात सुनी, उन्होंने कहा जी रिश्ता कराया हुआ था, बाद में वो जिसने कराया तो उसके पास आके कहने लगे कि लड़की को तो टीबी है, तुमने कहाँ रिश्ता करा दिया? उसने कहा किधर टीबी है, क्या हुआ? जाके पूछा, कोई बात कर रहा था, लड़की ने बीए बीएड कर लिया, वो बीएड को किसी ने टीबी समझ के आके खबर पहुँचा दी, रिश्ता तोड़ा दिया। आप देखिए कि औरतों में तो खास तौर पे ये जो हलूब है ना, इसको कुरान ने हलुआ कहा है, इन्नल इंसान खुली का हलुआ। हलू कहते हैं इंग्लिश में एंग्जाइटी को, हर वक्त ही तड़पते ही रहना, बात सुननी भी नहीं, आगे तैयार है, तड़प रहे, तो कूल डाउन, कीप काम। इस्लाम बंदे के अंदर ठहराव लाता है। अगर आपके बोलने में, चलने में, बात के अंदाज में ठहराव नहीं है, तो माजरत के साथ, ये आपके दीन का नक्स है। हम तेज क्यों बोलते हैं? हमें खतरा होता है कि लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम जल्दी जल्दी सुना दें। ऊंची क्यों बोलते हैं? क्योंकि बात में वजन नहीं होता। तो यहाँ आपके मेरे लिए ये बात एक क्राइटेरियन बन गई कि झूठी खबरों पे बातें ना करो। और आज सियासतदानों के खिलाफ खबरें सच्ची हैं कि झूठी, मुझे आपको नहीं पता। अगर किसी के बारे में झूठा स्कैंडल आपके मेरे से बन गया, कयामत के दिन वो हमारी सारी नेकियां ले जाएगा। चले, हुक्मरानों को तो छोड़िए, जो मजहबी रहनुमाओं के बारे में एक दूसरे पर जो कीचड़ उछाला जाता है, नीयतों पर शक, इरादों पर शक, अल्लाह की पनाह। मैं कहती हूँ, किसी इंसान के मुंह से किसी दूसरे दीनदार के लिए गलत लफ्ज़ सुनकर मुझे तो सबसे पहले उस पर शक होने लगता है कि ये खुद क्या है, अपने ही हम पेशा शख्स के बारे में ये ऐसी सोच रखता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बात को हकीकत में लेना चाहिए। फिर आप देखिए कि ये जो हमने बात की इसमें, कि अल्लाह के नबी उसकी बात सुनकर अगर हमला कर देते, कितना बड़ा नुकसान होता। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लीडर्स होते हैं, जो जिम्मेदारान होते हैं, उनको खामखा छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन नहीं लेना चाहिए। अब आप माएं, आप भी एक जिम्मेदार हैं, घर जाएंगी अभी देखिएगा कितने मुकदमे तैयार होंगे। कभी एक बच्चे की बात सुन के फैसला ना करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया दोनों की बात सुनो, एक फरीक की बात सुनिए अब दूसरे की सुनो। हमारा हाल क्या, अपनी दोस्त की बात सुन के उसके शौहर को गालियां देने लग जाएंगे, उसकी सास को जालिम करार देंगे। अपनी बहन की बात सुनी, उसके सारे इन लॉज को हमने यहूदी और नसरानी कह दिया। नहीं, दोनों की सुनिए, राय कायम करने से पहले दोनों की बात सुने। चर्ब जुबानी से बात करके अपने आप को सच्चा करना क्या मुश्किल है। अल्लाह के नबी कहा करते थे कि लोगों, मैं इंसान हूं, तुमने मेरे सामने आकर किसी के बारे में कुछ भी कहा और किसी की जमीन हथिया ली, मैं फैसला कर दूंगा। पर क्यामत के दिन तुम 7 जमीनों के तौक गले में पहने होगे, मैं कह दूंगा कि मैंने इसके बात करने से सुना। और कुछ लोग होते हैं बड़ी अच्छी बात पेश करते हैं, और जब रिश्ते टूटते हैं उस वक्त मैंने देखा इन बातों को। आप जिसके करीब हैं आपको वो सच्चा लगता है। आपकी दोस्त की बेटी थी, आपको लगेगा इससे बड़ा जुल्म किसी के पास नहीं हुआ। तो आपकी दोस्त का बेटा था, आपको लगता है इनसे बुरी बीवी किसी को नहीं मिली थी। खुदारा कभी ऐसा ना करें, हकायक की बुनियाद पर बात करें, फिर किसी मुआशरे में सुकून और अमन होगा। ऐसी हर वक्त इधर की बातें उधर करना, ये तो तोतों का काम है। हदीस में आता है कफा बिल मरी कजीबा, किसी बंदे के झूठा होने के लिए यही बात काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे। आप और मैं अपने लिए इस पे अमल करें, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। फिर आप देखिए, चंद लोगों की गलती बहुत सारों में चली जाती है। अफवाह चंद फैलाते हैं और इंतशार बहुत सारों में फैल जाता है। फिर आप देखिए, वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुम, ये सहाबा की शांति। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे दिलों में भी अपनी मोहब्बत डाल दें। अब आखिरी हुक्म हमारे आज के सबक का, रूठे हुओं की सुलह करा दो। इस पे तो बहुत ही बात करने की जरूरत है, लेकिन आइए देखते हैं हम कितनी बात कर पाते हैं। वइन ताइफतानि मिनल मोमिनीन इक्ततलू, और अगर अहले ईमान में से दो गिरोह आपस में लड़ जाएं, क्या करो? खड़े होके तमाशा देखो, और इधर की बातें उधर और उधर की इधर करो, और उनको तड़पाओ, और इधर मजे लो और चस्के लो, और कान लग जाए फोन पे और तजस्सुस में, अब क्या हुआ, अब किधर हुई। वो जैसे क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, कई लोग खानदान में लड़ाइयाँ देख रहे होते हैं भाई बहनों की और झगड़ों की। ये मुस्लिम माशरा का नहीं। जब देखो कि दो ग्रोह लड़ गए, फसले हो भाई ना हुमा, उन दोनों की आपस में सुलह करा दो। किस बुनियाद पे सुलह कराए? चुप 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 बस सुलह सुलह नहीं, देखो रिसर्च करो क्या। फाइम बगत एहदा हुमा अल उखरा, इनमें से एक गिरोह दूसरे गिरोह से ज्यादती करे तो क्या करो? फकातिलुल्लती तबगी, तो ज्यादती करने वाले से लड़ो। ये नहीं कि अपने भाई का नाम लेके उसका साथ दे दो और भाभी को बुरा कह दो, या सिर्फ इसलिए कि ये मेरे खानदान का बंदा। नहीं, तुम हक वाले का साथ दो। हत्ता, कब तक? यहां तक के जब इस सारे मामले में क्या हो, तफीया इला अम्रिल्ला, वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए, यानी वो ज्यादती करना छोड़ दे। या तफिया इला अमरिल्ला से मुराद क्या है कि ज्यादती करने वाला ज्यादती करना छोड़ दे, तब तक तुम उससे मामला करो। फाइन फात, फिर अगर वो पलट आए, यानी कन्फेस कर लेता है, इकरारे जुर्म कर लेता है, हाँ मेरी गलती थी, या मैंने मान लिया मैं रॉन्ग था, फसलहू बैनहुमा बिलअदली, तो फिर इनके साथ आपस में सुलह करा दो। कैसे? वक्सितु, और इंसाफ कायम करो। इन अल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। यानी एक मुस्लिम शख्स का किरदार दो लड़ने वालों को देखकर और लड़ाना नहीं, चुप रहना नहीं, इधर की उधर नहीं, और सिर्फ अपने ही घर वाले या अपने खानदान के या बिरादरी के नाम पे साथ देना नहीं, बल्कि हक का साथ लो। रिसर्च करो, गलती किसकी है, कसूर किसका है, दोनों को उनकी गलती बताओ। जिसने जिसने अपनी गलती मान ली, जब दोनों रियलाइज करें, तो फिर बड़ी बराबरी के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो। ये सारा कुछ क्यों? इसलिए कि इन्नमल मोमिनूना, बेशक सिवाय इसके कलमा हसर है, यानी इसके सिवा कोई एक मोमिन का दूसरे मोमिन के साथ ताल्लुक हो ही नहीं सकता। झगड़ा तो दूर की बात, लड़ाई तो दूर की बात, बस एक बात याद रखो कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का क्या है? भाई है। इन नमल मोमिनून इखवा, भाई हैं, भाईचारगी है इनके अंदर। फसलहू बैन अखवैकुम, बस इसलाह करा दो, सुलह करा दो आपस में अपने भाइयों के दरमियान, यानी अपने भाइयों के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम पे रहम किया जाएगा। बड़ी जामे आयत है। पहली बात, इस्लाम अदल का दीन है, पीस का दीन है और इंसाफ का दीन है। लड़ाई झगड़े इस्लाम में नहीं चल सकते। याद रखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपस का झगड़ा या लड़ाई नेकियों को मोड़ देता है जैसे उस तरह बालों को मोड़ देता है, यानी शेवर से या ट्रिमर से सर के बाल काटें तो सारे बाल उतर जाएंगे, जड़ों तक कट जाएगा। फरमाया नेकियों को मोड़ देता है, और मैं ये नहीं कहता कि बालों को मोड़ता है, ये तुम्हारी नेकियों को मोड़ देता है। क्या? आपस का झगड़ा और लड़ाई। आप जरा सा सोचिए, हम इसको बड़े लेवल पे लें। इसी एक आयत की जद में हजरत अली और हजरत मुआविया का हुक्म आता है। थे दोनों मुसलमान गिरोह, लेकिन कोई ना कोई आपस की गलत फहमी थी, झगड़ा हो गया, अल्लाह ने उन दोनों को सुरखरू कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के पास हजरत मुआविया का अगर कोई सियासी झगड़ा था, ना मुझे बोलने का हक है ना आपको बोलने का हक है, बस हम ये कहेंगे कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदुअन। एक बादशाह ने दोनों में से एक को खत लिखा कि हमने सुना है कि तेरी बड़ी लड़ाई है तेरे भाई से, हुक्म कर हम फौजें लेकर आए। तो हजरत अली या मुआविया ने दूसरे के बारे में क्या कहा? उस बादशाह को, खबरदार अगर तू हमारे बीच में बोला, अगर तू अली के खिलाफ या मुआविया के खिलाफ फौजें लेकर आएगा, सबसे पहले मैं तुझसे लड़ूंगा। ये हमारा आपस का मामला है, तू बीच में टांग ना अटका। अगर आज मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान के बारे में गैर मुस्लिमों को ये पैगाम दे दें, तो आज दुनिया का नक्शा फर्क होता। लड़ने झगड़ने से, याद रखिए, नेकियां खत्म हो जाती हैं, शैतान खुश होता है। शैतान का अटमोस्ट गोल यही है कि मुसलमानों को आपस में बदगुमान करे और पीछे चले। और आप यहां देख रहे हैं, फिरके की बात है, ताइफा की बात है, ये सारी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे जहां भी लड़ाई झगड़े हों, ये पसंदीदा नहीं। चलिए, ये तो दो मुल्कों गैर मुस्लिमों के या एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम की बात है। आप एक बड़े मुसलमान के हमसाया मुल्क से लड़ने की बात करते हैं, उनको तो छोड़ें, वो मेरे आपके बस में नहीं। हम अपने घरों के झगड़ों का क्या करें? भाई बहन से लड़े, क्या आप उसको भाईचारा कहेंगे? शौहर बीवी से लड़े, आप अपने शौहर को उसके घर वालों से लड़ाएं, ससुराल से झगड़े, कि आज हम मुसलमान इतने फारिग नहीं हो चुके? अपने जाती झगड़े लड़ते रहते हैं, दुश्मनों से जाके कौन झड़े? सारा जिहाद, सारा दिफा अपनी जात का, दूसरों के लिए कौन होगा? तो याद रखिए, झगड़े से बचें। अल्लाह के नबी की इतनी खूबसूरत ऐसी हदीसें हैं कि झगड़ों से दूर भागो, खड़ा रहने वाला चलने वाले से और बैठ जाने वाला खड़ा रहने वाले से बेहतर है। यानी जितना फितनों से, आजमाइशों से, झगड़ों से दूर रहो। देखिए, इससे इस्लाम बदनाम होता है ना, आपको चीज़ मिलेगी ना उसको मिलेगी, दुश्मनों को मिल जाएगी। किसी एक मुल्क की बात है, मुझे वहां के साथियों ने सुनाया और वहां जाकर दिखाई वो जगह, इतना बड़ा, वहां एक बड़ी ओपरा टाइप की बिल्डिंग है, बड़ी महंगी जगह शहर की, और उन्होंने कहा कि आज से कई साल पहले यहाँ की गवर्नमेंट ने ये जगह मुसलमानों को दिखाई थी। क्योंकि हर मुल्क के अंदर जैसे पार्क बनने की जगह होती है, इस तरह कुछ, तो वहाँ उन्होंने रिलीजन के नाम पे भी जगह छोड़ी होती हैं कि हमारे इस शहर के नक्शे में ये जगह रिलीजन के लिए छोड़ी हुई है, अगर आप मुसलमान चाहें तो इधर मस्जिद बना लें। आपको पता क्या हुआ? हर फिरके मसलक के मौलवियों ने और सब ने आकर क्लेम कर दिया, बनेगी तो हमारी बनेगी, दूसरे की नहीं बनेगी, उसकी नहीं बनेगी। ऐसे झगड़े हुए, गवर्नमेंट ने वो जगह वापस लेके आज वहां एक इतना उपड़ा उपरा बना दिया, जाओ तुम झुटियां करो, मौज करो। और इस वक्त वो खरबों की जगह होगी जितनी महंगी जगह, और शहर का दिल। हम मुसलमानों ने आपस के झगड़ों से लोगों को क्या दिया? कभी आपने, मैंने ये बात सोची, मैं तो बाहर चलती हूँ ना, तो मैं तो अपने हाल उलिए की वजह से लोगों को पैगाम देती हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। मैं तो एक ट्रैफिक का रूल नहीं तोड़ूंगी, मैं कभी रेड लाइट को क्रॉस नहीं करूंगी क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। लोग ये नहीं कहेंगे एक औरत ने रूल तोड़ा, कहेंगे एक मुसलमान ने तोड़ा। मैं कभी किसी राह जाते को धक्का दे के नहीं जाऊंगी, और मैं किसी के पाँव पे पाँव नहीं रखूंगी क्योंकि आई एम अ मुस्लिम। जब हम मुसलमान गैर मुस्लिम मुल्कों में लड़ते हैं तो क्या नाम देते हैं? ऐसी ऐसी घिनौनी मिसालें, कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं जहां मस्जिदों के अंदर, गैर मुस्लिम आते हैं बूटों के साथ मस्जिदों में आके रोंदते हैं उन मस्जिदों को, आपस में दो मुसलमानों की लड़ाई मचाने के लिए। नमाजों में झगड़े, मैनेजमेंट के झगड़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कब्र में क्या लेके जाना है? एक छोड़ देता तो दूसरे को तो मिल जाती, एक ना लेता दूसरे को ना मिलती, दुश्मनों को तो ना मिलती। और याद रखिए, इससे नुकसान क्या हो रहा है? अल्लाह के दीन का नुकसान हो रहा है। तो अब मिसाल है, ये मस्जिद है जिन्होंने बनाई, दी पैसा लगाया कि नहीं? और हम यहाँ ये पढ़ने की बजाय, जो इतना हमारा कोशिश है कि और भी सीख लें और भी सीख लें, हम यहाँ आके झगड़े फसाद शुरू कर दें, और अल्लाह ना करे गवर्नमेंट आए और के निकलो इधर से, बंद करो इसको। नुकसान किसका हुआ? मेरा आपका? कम। हमारा कम है, उनका नुकसान है जिन्होंने इसमें एक एक पैनी डालकर इसको जमा किया, जिन्होंने इस मस्जिद के लिए फंडिंग की, ये उनकी बदनसीबी है कि उनका सदका जारिया वहीं फौत हो गया। तो याद रखिए, वो दीन लाइए सामने जिसमें झगड़े ना हो, छोड़ दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा जो हक पे होते हुए अपना हक छोड़ दे, मैं उसको जन्नत के बीच में खुशखबरी देता हूँ महल की, मन तवादा लिल्लाही, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह उसको बुलंदियाँ दे देता है। ये सबक नहीं आज हमने पढ़ा, हदीसें याद, ग्रामर याद, फिक याद, हमारी तिलावत अच्छी, हमारी तजवीद अच्छी, अल्लाह के हुक्म से हिफ्स है, लेकिन ये अखलाक आज उम्मत मुस्लिम और ख़ास तौर पर इसके रिलीजस लोगों के लिए पढ़ने के काबिल है कि दूसरों को बर्दाश्त करना सीखो। हमारा दीन बर्दाश्त का दीन है, 13 साल मक्का में बर्दाश्त किया, कोई काबा में जाके झगड़ा नहीं किया, वहाँ क्या नहीं हुआ? आप देखिए 313 बुत पड़े थे, हम होते तो सर फोड़ के आ चुके होते। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस्लाम का चलता फिरता नमूना बना दे। यही चीज़ें आगे वाले हिस्से में कल कंटिन्यू करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मेरी मदद फरमाए। अगले पेज से ज़रा चेक लिस्ट निकाल लें, ख़ास तौर पर इस सूरत की चेक लिस्टें तो आपने ज़रूर फिलअप करनी है क्योंकि इसका आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक है। पेज 57 है ये, अब लेसन सुना, अब करूँ क्या, मैं क्या करूँ? नंबर एक, अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह के हुक्म के आगे अपनी राय नहीं देनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ते हुए सुनते हुए दिली एहतराम के साथ खामोशी अख्तियार करनी है, अपने उस सातिजा के अहकाम की तामील दिली एहतराम से करनी है, उस सातिजा से मुलाकात में बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, उस सातिजा वालिदैन और उम्र में उस बड़े अफराद के साथ गुफ्तगू में आवाज़ पस्त रखनी है, काबिले एतमाद लोगों के अलावा दूसरों की तरफ से आने वाली खबरों की तहकीक करनी है, दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो इंसाफ के साथ सुलह करवानी है। करेंगे ये सब कुछ इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद जायजा लेना है, आज की चेकलिस्ट के काफी सारे पॉइंट हैं। पहला, क्या मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्म के आगे अपने राय देती हूँ? सोचिए, गौर कीजिए, फिर हाँ नहीं किसी हद तक और बहुत हद तक में से अपनी मौजूदा हालत को देखकर मार्क कीजिए। तभी इस्लाह होगी, अगर बेसोचे समझे सबको यस यस कर देंगे तो इस्लाह नहीं होगी। क्या मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल के हर हुक्म की इताअत करती हूँ? इसमें अपने वो सारे काम सोचें जहाँ इताअत नहीं करती। क्या मैं अपनी क़ियादत के फैसले दिली इख्तराम के साथ तस्लीम करती हूँ? अब यहाँ आप आते हैं तो आपको कई रूल्स दिए जाते हैं ना, तो खुशी से रूल्स और रेगुलेशंस को मान रही हूँ कि बोझल हूँ? ये आपका इंशाल्लाह तज़किया होगा इससे। क्या मैं अपने उसातिज़ा से मुलाकात के लिए बाहर से आवाज़ें देती हूँ या दस्तक देती हूँ? क्या मैं हर खबर जो काबिले एतमाद जरिए से ना आए इसकी तहकीक करती हूँ? इसमें आप अपनी सारी फ़ोन कॉल्स और चिट चैट को नोट कीजिए। क्या मैं दो गिरोहों के दरमियान झगड़े की सूरत में सुलह करवाती हूँ? सुलह की तरफ बहुत कम लोग आते हैं, सिर्फ बैठ के इधर की बातें और उधर की बातें और बढ़ाते हैं, तो सुलह करवाइए, ये बहुत बड़ा अमल है। फिर क्या मैं जालिम को पलटाने की कोशिश करती हूँ? क्या मैं सुलह करवाने के लिए मजलूम को दबाकर समझौता करने पर मजबूर करती हूँ? इसके बाद अगले पॉइंट हैं, क्या मुझे यकीन है? सोचिए, अल्लाह ताला सब कुछ सुनने और जानने वाला है, अल्लाह ताला मोमिनों के दिलों को तकवा के लिए जांच लेता है, अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और रहीम है, अल्लाह ताला ही ईमान की मोहब्बत देने वाला है, अल्लाह ताला ही ईमान को मोमिनों के लिए पसंदीदा बनाने वाला है, अल्लाह ताला ही कुफर, फिस्क और नाफरमानी से मुतनफ़र करने वाला, अल्लाह ताला के फजल और एहसान से ही इंसान हिदायत याफ्ता हो सकता है, अल्लाह ताला अलीम व हकीम है, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है और अल्लाह ताला से डरने वालों पर रहम किया जाता है। अगर आपने शौर से ये सारे नुक्ते सुने तो मुझे उम्मीद है कि दूसरों से ज़्यादा आपको अपनी इस्लाह की फ़िक्र लगेगी। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इसको आसान करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।